इस पट्टी के उद्देश्य एवं लक्ष्य को हम सभी के आगे स्पष्ट करेंगी आदरणीय शीलू बहन।
कुंती बहन का भी तो धन्यवाद करो। हाँ, कुंती बहन का भी स्वागत करो। आप भी मुंबई के हैं, अपना परिचय दिया है, पहले अपना परिचय दो। अपना परिचय आप स्वयं ही दो, क्योंकि ये आपकी सारी बट्टी देखेंगी, पूरा ध्यान रखेंगी। आपकी बहनें तो है ही है, वो तो सदा आपके साथ है, लेकिन आप विशेष इस बट्टी के लिए निमित्त बनी है, आपकी विशेष सेवा इनके द्वारा।
मैं समझती हूँ कि उल्लासनगर वाले शायद पहचानते तो है, फिर भी हम आपको बता दें कि 1968 में इस ईश्वरीय ज्ञान में रेगुलर रही, 66 में सुना था परंतु 68 से रेगुलर रही, और 71 में ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए। वर्तमान समय बोरीवली सब जोन के कनेक्शन में मलाड में सेवाएं दे रहे हैं, और जब जब मधुबन से निमंत्रण आता है तो मैं ना नहीं करती हूँ उस समय। हाँ जी, क्योंकि ऐसा चांस मिलना वो कोई को ही मिलता है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में सदा हाजिर रहती हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। शुरू में ही एक गीत आप सबने सुना, लगी लगन बस एक ही, एक यही। क्या लगी लगन? हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत, अब हमें घर चलना है। तो आप सभी तपस्या करने के लिए इस मौन तपस्या भट्टी में पधारे हो, तो बाबा के घर में दादी जानकी जी, दादी गुलजार, सर्व वरिष्ठ भाई बहने, सर्व मधुबन निवासियों की तरफ से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, जैसे कुंती बहन ने कहा कि बहुत ही भाग्यशाली हो, उल्लासनगर में मैं जानती हूँ बहुत स्टूडेंट्स है। मैं आई हूँ, देखा भी होगा मुझे उल्लासनगर में काफी। मैं शायद दो बार आई हूँ, कितनी बार आई हूँ? हाँ, दो तीन बार आई हूँ। एक बार तो इतना बड़ा प्रोग्राम किया था, पूरा केबल टीवी द्वारा सारे उल्लासनगर में वो प्रोग्राम दिखाया गया, लाइव टीवी। बहुत अच्छा सहयोग है उल्लासनगर में, और मैं सबको दृष्टि के द्वारा मिल तो रही थी, काफी सारे तो जाने पहचाने चेहरे हैं, लेकिन कुछ कुछ नए चेहरे देखे। तो जो जाने पहचाने चेहरे हैं वो तो कई बार मधुबन आए होंगे और बहुत पुराने भी होंगे, तो जो कुछ नए चेहरे देख रही हूँ, हो सकता है कुछ नई भी हो, लेकिन वो अभी मैं नहीं पूछ रही हूँ। परंतु आप सब इतने भाग्यशाली हो कि उल्लासनगर में तो स्टूडेंट्स तो बहुत हैं, बहुत सेवा ने वृद्धि को प्राप्त किया है, लेकिन उसमें से आप ही गिने चुने आए हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए, कई आना चाहते होंगे लेकिन उनकी लॉटरी नहीं लगी, आपकी लॉटरी लग गई और आप पहुंच गए। मुझे ये भी बताया गया है कि कोई कैसे आए हैं, कोई कैसे आए हैं, टिकट भी नहीं मिली, रिजर्वेशन भी नहीं मिली, कहां कहां से ट्रेन लेकर के बस पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है। तो अभी आप अपने आप के लिए भले जोर से ताली बजाओ, अपने लिए जहां भले अपने लिए, हाँ जोर से बजाओ, अपने लिए तो भले जोर से बजाओ ना, हमारे लिए हाँ जोर से। तो बहुत खुशी हुई आप सबको इस मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि में तपस्या करने के लिए पहुंचने पर, तो अगले चार दिन इस मौन तपस्या भट्टी में आप बहुत कुछ पाएंगे। पिछले साल से यह मौन तपस्या भट्टियां शुरू हुई है मधुबन में, और भी रौनक बढ़ गई है। पहले तो यहाँ अकाउंट्स होते थे तो टीचर्स आती रहती थी, लेकिन अभी तो सब कुछ शांतिवन में चला गया है, तो मधुबन का पूरा लाभ लेने के लिए कई आत्माएं तरसती रही कि हम तो मधुबन में तो आ ही नहीं पाते हैं, पांडव भवन में नीचे ही सब रे प्रोग्राम होते हैं, तो चलो कोई कोई अपना समय निकाल करके चार धाम की यात्रा करने आ जाते हैं। बाबा ने ये चार धाम बनाए हैं तो इसीलिए उसके लिए आ जाते, लेकिन फिर वापस जाना होता क्योंकि यहाँ तो कहाँ रह सकेंगे, इतना बड़ा स्थान भी नहीं है शांतिवन की तरह जो हजारों रह सके। और मधुबन के अपने ही भाई बहने समर्पित भी है, हॉस्पिटल भी है काफी बड़ा, यहाँ का भी अपना क्लास है, तो इसीलिए ये रिक्वेस्ट आई कईयों की कि मधुबन में क्यों नहीं हमारी ऐसी भट्टियाँ हो। तो पिछले साल से ये शुरू की है, उल्लासनगर पिछले साल आया था या इसी साल पहला, ये पहला मौका है ना पुष्पा, पहला मौका है, पिछले साल भी आए थे, नहीं ना पहला है, तो ये पिछले साल से ये भट्टियाँ शुरू हुई है। तो इसीलिए फिर यही सोचा कि चलो आए तो कितनों को बुलाएं, क्योंकि आना तो बहुत चाहेंगे, तो फिर लिमिट रखी केवल 200, इनसे ज्यादा नहीं, क्योंकि प्रबंध ही इतना अच्छा दे पाएंगे। दूसरा डाइनिंग हॉल्स भी शांतिवन की डाइनिंग हॉल की तरह तो नहीं है जितने बड़े बड़े हो, नीचे से भी बहुत पार्टियां आती रहती है, ज्ञान सरोवर में विंग्स का कार्यक्रम चलता रहता है तो वहाँ के भी लोग यहाँ आते ही रहते हैं, तो काफी सारा हो ही जाता है। लेकिन इस मधुबन के वातावरण को और शक्तिशाली बनाने के लिए इस मौन तपस्या भट्टी में आपको निमंत्रण दिया है, तो आप सबने ये बैज लगाया है, हैं? बैज लगाना केवल लगाना नहीं है, एक बहुत बड़ा ठप्पा लगाना है, जैसे ठप्पा लग जाता है ना, सील हो जाता है, तो उसमें फिक्स्ड हो गया, उसमें सुरक्षित हो गया, ये है ठप्पा लगना। तो ये जो बैज है ये ठप्पा लगा आपके ऊपर कि मौन तपस्या भट्टी हमें करनी है। तो मौन तपस्या भट्टी तो बहुत बड़ी चीज है, केवल मौन में रहना ये बड़ी चीज नहीं है, केवल तपस्या करना ये बड़ी चीज नहीं है, केवल भट्टी करना ये बड़ी चीज नहीं है, पर तीनों इकट्ठी हो जाए, मौन भी हो, तपस्या भी हो और भट्टी भी हो। तो मौन का बहुत गहरा राज है, क्या है इस भट्टी का उद्देश्य लक्ष्य, यही आपको बताना इस समय, बाकी अगला ही क्लास भी आपका कराएंगे। लेकिन मौन का महत्व बहुत बड़ा है, साइलेंस, साइलेंस की एक बहुत बड़ी शक्ति है, कहा जाता है आवाज से भी ऊंची शक्ति है साइलेंस की, इंग्लिश में कहते हैं साउंड इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, आवाज में आना ये चांदी की तरह है और साइलेंस ये सोने की तरह है, तो साइलेंस इज गोल्ड। बाबा साइलेंस की कितनी महिमा करते हैं, साइंस भी आज इतनी तरक्की कर चुका है क्योंकि जो वैज्ञानिक जिन्होंने ये आविष्कार किए हैं वो कितना साइलेंस में गए होंगे, अंडरग्राउंड चले गए होंगे, और उसी अंडरग्राउंड स्थिति में, उस साइलेंस की स्थिति में, उस एकदम शांत वातावरण में उन्होंने कई खोज की, कोई खोजें की होगी, और इतने सारे विज्ञान के साधन हमारे लिए बनाए हैं, सुख के साधन बनाए हैं। तो बाबा कहते हैं ये विज्ञान तो कुछ वरदान भी है तो परंतु कुछ अभिशाप भी है, विनाश भी यही लाएगा, लेकिन स्थापना में भी साइंस की बहुत मदद है। परंतु इस साइंस का आधार क्या है? साइलेंस। तो साइलेंस की वो शक्ति है जिससे हम सारे विश्व को बदल सकते हैं। तो वो शक्ति संग्रह करने के लिए आप सभी यहाँ आए हो। हम जानते हैं कि जहाँ आप रहते हैं कितना कोलाहल होगा, आवाज होगा, न जाने क्या क्या होगा। तो यहाँ सब आवाजों से दूर, सब प्रकार के प्रदूषण से दूर, आवाज का भी प्रदूषण नहीं, हवा, जल, पांचों तत्व आज प्रदूषण युक्त हो गए हैं, और बाबा ने इतना सुंदर ये वातावरण यहाँ दिया है, और वो भी बीच बीच में मॉनसून की रिमझिम। तो आज भी आप मॉनसून की ही, आज पहला सावन का पहला सोमवार है, श्रावण का पहला सोमवार, शिव भक्त आज के दिन कितना दूर दूर से कांवर में जल ला करके शिव की भक्ति करते हैं, और हम तो शिव भगवान के घर में बैठे हैं, ज्ञान अमृत, योग अमृत पी रहे हैं और पिला रहे हैं। तो हम तो कितना ऊंच भाग्य का वर्णन जितना करें उतना कम है, और उसमें भी ये मौन तपस्या बट्टी बहुत ऊंची अनुभूति करा सकती है। परंतु मौन का मतलब ये नहीं है कि केवल मुख का मौन हो, मौन की गहराई बहुत जबरदस्त है। मौन अर्थात मन का भी मौन हो, मुख का मौन तो कोई बड़ी बात नहीं है, कई सन्यासी भी रखते हैं, महात्माएं, गुरु लोग बहुत रखते हैं, भक्त लोग भी रखते हैं, लेकिन ये मन का मौन, मन भी मौन में रहे, मुख में आवाज शब्द न हो ये बड़ी बात नहीं है, पर मन भी शांत रहे। जिस मन को कहा जाता है कि बड़ा चंचल है, घोड़े की तरह है या बंदर की तरह है, बंदर का काम क्या होता है? कूदता ही रहता है, शांत बैठ नहीं सकता। तो मन भी बंदर और घोड़ा, इन दो से तुलना की गई है कि शांत नहीं बैठ सकते, पर यहाँ इस मन रूपी घोड़े को शांत करना है, बंदर को मंदिर लायक बनाना है। तो कैसे मन को शांत बनाएंगे? दुनिया के सब विचारों से दूर, सब आवाजों से दूर, सब प्रदूषणों से दूर, और अभी तो ऐसा माहौल है कि बिल्कुल सूक्ष्म वतन है, मॉनसून के समय या माउंट आबू में जैसे सूक्ष्म वतन का अनुभव करते, बादलों के बीच में जैसे उड़ रहे हैं, चारों ओर बादल ही बादल होते हैं, फॉगी होती है, इतने तक कई बार फॉगी आ जाती है कि यहाँ खड़े होकर अगर ओम शांति भवन देखना चाहे आंगन से तो दिखाई नहीं देता, जैसे कि कुछ है ही नहीं। अभी तो इस साल सुना है कि मॉनसून इतनी नहीं होगी, पर जुलाई और फिर अगस्त, अबू के लिए कहते थे अगस्त इज डिसगस्ट, डिसगस्ट माना इतना परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दिन रात बारिश पड़ती रहती है, दिन रात, रात को भी तो चलो पड़े, पर दिन को भी, सारा दिन और रात न कपड़े सूखने का नाम ले, न धूप निकलने का नाम ले। एक बार बड़ी दीदी जी ने किसको पत्र लिखा, बड़ी दीदी थी ना, ये जुलाई का महीना बड़ी दीदी का महीना है, 28 तारीख को बड़ी दीदी का दिन है, तो दीदी जी ने किसको पत्र लिखा है, लिखा कि सूरज रूठ गया है, सूरज भाई रूठ गया है। तो किसको लगा वो सूर्य भाई जो अपना है ना, कहीं वो रूठ गया हो, 8 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो कईयों के पत्र आए, क्या बात है, कौन सूरज भाई रूठ गया है, कहाँ चला गया? तो पता चला ये सूरज है ना, ये रूठ गया है। 8 दिन तक सूरज ने मुखड़ा ही नहीं दिखाया है, क्योंकि हर वक्त बारिश और बादल और फॉगी, तो सूरज का वो मुखड़ा ही नहीं दिखा रहा है, क्योंकि बादलों के बीच में ही सदा ढका रहता है। तो इसीलिए ऐसा होता है, लेकिन इस साल थोड़ी कम पड़ी है बारिश। मुंबई में तो बहुत बारिश है ना, बहुत जरूरी बात है तो कोई बात नहीं, बहुत जरूरी बात हो सकती है, घर की व्यवहार की धंधे की हो सकती है, हम ऐसे कहते नहीं होगी, लेकिन आप उनको पहले से बता दो भाई 4 दिन मैं यहाँ मौन तपस्या भट्टी में हूँ, मुझे कोई फोन मत करें। ऐसे हो सकता है कि नहीं होगा, कि धंधा याद आएगा, दुकान याद आएगा, घर याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, आएगा कोई? तो इसलिए पहला ही मंत्र क्या बताया, 5 केले खाओ, तो कोई भी याद नहीं आएगा। जिम्मेदारी है क्यों नहीं, लेकिन आप वो जिम्मेदारी सौंप के आए होंगे ना, या यहाँ लेकर आए हो वो जिम्मेदारी? हमको तो कई बार लगता है, कई भाई बहने यहाँ आते हैं तो घर को याद करते हैं, घर गए तो यहाँ को याद करते हो, वहां इतना अच्छा था, और जब यहाँ है तो उसका पूरा लाभ नहीं लेते, ये भी हमने देखा है। एक बहन दादी जानकी जी के पास गई, दादी के आगे रोने लग गई, भाई क्यों रो रही हो, क्या बात है? दादी यहाँ तो बहुत अच्छा है, दादी यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर वहां जाऊंगी तो क्या होगा मेरा, वहां पर क्या होगा मेरा, इसलिए वो सोच कर रो रही है। तो दादी को लगा पता नहीं किसने कुछ कह तो नहीं थी, रो रही क्यों रो रही है, वहां जाऊंगी तो क्या होगा? दादी ने कहा वहां का सोच, यहाँ आप आई हो तो पूरा लाभ लो ना यहाँ का, और इतनी शक्ति भर के जाओ जो वहां अगर गई भी तो आपकी शक्ति के आगे वो तो सूली से कांटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो बात चली गई। आप वहां यहाँ सोच रहे हो तो जो शक्ति भरने का समय है उसको तो आप व्यर्थ गंवा रही हो। तो एकदम उसको होश आया, दादी ने कहा आज से रोना बंद, पहले तो रोना बंद, दूसरा यहाँ हो तो वहां का सोचना बंद, बस एक ही संकल्प करना है, मुझे यहाँ अपनी आत्मा में शक्ति भरनी है। इसलिए बाबा मुगलियों में बहुत सुनाते हैं कि बच्चे मधुबन में आते हैं तो अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, बहुत यूज हुई तो डिस्चार्ज होगी ना, रोज मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है ना, डिस्चार्ज हो गया तो फिर तो नहीं कुछ भी उसका यूज कर सकेंगे, इसलिए आत्मा रूपी बैटरी को भी हमें चार्ज करना है, तो उसके लिए आप आए हो। तो बाबा दो बातें बताते हैं, एक तो यहाँ बैटरी चार्ज करने आए हो पावर हाउस के पास, और दूसरा बाबा कहते सागर के कंठे पर आए हो बादल भरने। आप देखेंगे जहाँ सागर होगा ना वहाँ बादल जरूर होते हैं उसके ऊपर, सागर के ऊपर, क्योंकि वहीं पर वो बादल पानी खींचते हैं सागर से, तो धूप भी होती है तो धूप से वो बाफ बनता है जल, फिर वो बादल बनते हैं, फिर जा करके वो बरसते हैं। तो इसीलिए यहाँ बादल आए हो भरने के लिए और फिर जा करके बरसना है। तो यहाँ आपकी क्लासेस भी खूब होगी, सुबह से लेकर रात्रि तक आपका दिन कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। 4 दिन ऐसे बीत गए आप सोच भी नहीं पाएंगे, अरे 4 दिन बीत गए, ये भी भूल जाएंगे आज क्या तारीख है, कौन सा दिन है, यहाँ तो पता ही नहीं। तो ये अनुभव मधुबन से करना, ये चार धाम जिनकी बाबा इतनी महिमा करते हैं, जहाँ बाबा ने तपस्या की है, मम्मा ने तपस्या की है, दादियों ने तपस्या की है, सब ने, आदि रत्नों ने यहीं तपस्या की है। तो चार धामों से क्या क्या हमें अनुभव करना है, बाहर लिखा हुआ है। हा? बाबा की मुरली में एक बार ये आया था तो हमने उसका बोर्ड बना दिया, बाहर लिखा हुआ है, पढ़ना अच्छी तरह से कि मत कि झोपड़ी में क्या अनुभव करना है, कमरे में बाबा के कमरे में क्या अनुभव करना है, हिस्ट्री हॉल में क्या अनुभव करना है और शांति स्तंभ पर क्या अनुभव करना है। झोपड़ी में तो बाबा को अपना खुदा दोस्त बनाओ, जैसे दोस्त के आगे सब बातें बताते हैं ना, अपना दिल हल्का करते हैं दोस्त के आगे। तो बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ हमारा खुदा दोस्त है, तो बाबा को अपने दिल की सब बातें बता दो। कुछ भी आपको, शायद कुंती बहन पत्र भी लिखवाएंगी ना, कुंती बहन पत्र भी आपसे लिखाएंगी, बाबा को पत्र लिखो। अब क्या पत्र में लिखना है वो आपके ऊपर है, कैसा पत्र लिखोगे बाबा को ये आपके ऊपर है। तो इसीलिए बाबा को, चलो जब तक वो दिन आए और पत्र लिखना हो, उसके पहले बाबा के कमरे में बाबा से दिल की बातें तो करो। दिलवर तो आपका बाबा है, उनको अपने दिल की बातें सुनाओ और एकदम हल्के हो जाओ, बाबा को सौंप दो। बाबा कहते हैं मुझे यूज करो। अगर कुछ मन में बात आती भी है ना, नहीं मौन रख पाते हैं मन का मौन, कुछ विघ्न है, कुछ बात है, कोई बोझ है, बाबा को बाबा की झोपड़ी में दे दो, दे दो बाबा, ये आप संभालो। और देखना बाबा इतना अच्छी तरह संभाल लेगा, आपसे भी ज्यादा अच्छा, आपसे भी, आप वहां होते इतना नहीं कर पाते जितना आप यहाँ हैं, और बाबा को ये कार्य दिया बाबा ज्यादा अच्छी तरह संभाल लेगा। पर उनको अपना दोस्त बनाओ। शरीर तो राख बन ही जाना है, तो इसीलिए आत्मा को सच्चा सोना बनना है। तो ये शरीर तो राख बनना ही है, तो इसलिए उनसे हम बुद्धि हटाते हटाते आत्मा पावन बन करके उड़ जाए वतन में, आत्मा पंछी बन करके उड़ जाए, आत्मा बाबा के इतने समीप चली जाए जो समान बन जाए। बस ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है इस भट्टी का। तो बाकी तो और भी बहुत बातें हैं, आपको हमारी कुंती बहन सुनाएंगी, लेकिन जो आंतरिक मेहनत आपको करनी है इस मौन तपस्या भट्टी में, पकना है, गलना है, बदलना है। अपने अंदर देखो, ऐसा कौन सा मेरा संस्कार है जो मुझे विघ्न डाल रहा है, क्योंकि अंत के समय वही संस्कार विघ्न रूप बन जाएगा। बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, हवच, बाबा ने एक शब्द दिया हवच, जमा करने की आदत, अंत में वही बात याद आएगी। मुझे याद है एक बहन अपना अनुभव, किसी का अनुभव सुना रही थी कि वो बहन को था, इतना मेरे पास पैसा है, मैं इसको सफल करूं, मैं सफल करूं, सफल करूं, सफल करूं, खाली सोचती रही, पर कुछ किया नहीं, रोज देखती थी सफल करना है, सफल करना है, और अंतिम घड़ी आ गई, अंतिम घड़ी आ गई। अब वो बोलना चाहती लेकिन मुख बंद हो गया, बोल ही नहीं सकी, भाई क्या बोलना है, बोलो बोलो, बोल ही नहीं सकी। और वो पता नहीं उस धन में ही उनका वो प्राण जैसे चले गए, आत्मा उसी सोच में चली गई, पता नहीं। मतलब कहने का भाव है कि बाबा कहते हैं कि अंत की मति का भी आधार बहुत काल का अभ्यास है। इसीलिए वो अभ्यास ऐसा करो जो आत्मा न्यारी बनती जाए या गलना है, मिटना है। और कोई अगर संस्कार आपको विघ्न डाल रहा है, उस संस्कार को यहाँ खत्म करना है, वो बाबा को दे दो, बाबा के आगे होम कर दो, तो देखो इतनी शक्ति आपको मिलेगी, आप महसूस करेंगे बिल्कुल बदल गया। यही भट्ठी, भट्ठी माना पकना, गलना, बदलना। संस्कार जो पुराने हैं वो गल जाए, वो भस्म हो जाए, राख बन जाए, ये अनुभव हमको यहाँ से करना है। ठीक है।